आखिरत के हौलनाक मराहिल में से इंतहाई हौलनाक मरहला मीजान पर आमाल तुलने का हो कि अगर तमाम आसमानों और जमीन को उसमें वजन किया जाए तो उसमें समा जाए। इतना बड़ा तराजू या इतना बड़ा मीजान होगा, ये कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो फिर इनको तोला कैसे जाएगा? तो हमें नहीं पता किस अमल से रब राजी हो जाए, किस अमल से हमारी मगफिरत हो जाए, तो नेकियां करते रहिए। तो सच्ची बात यह कि अगर सच्चा सवाल करें अपने आप से कि मेरे गुनाह ज्यादा हैं या नेकियां ज्यादा हैं, तो जवाब तो आ रहा है। एक बार फिर आपको वेब सीरीज कयामत के बाद में खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आप कैसे हैं? एक बार फिर आपको वेब सीरीज कयामत के बाद में खुशामदीद कहते हैं। आज हम इंशाल्लाह एक बड़ी कमाल की यूनिक मालूमात आपको देने जा रहे हैं। अल्लाह करीब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और हम अदल के तराजू रखेंगे कयामत के दिन, तो किसी जान पर कुछ जुल्म ना होगा, और अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो तो हम उसे ले आएंगे, और हम काफी हैं हिसाब को। व्यूअर्स, आखिरत के हौलनाक मराहिल में से एक इंतहाई हौलनाक मरहला मीज़ान पर आमाल तुलने का होगा। जी हाँ, स्केल लगाया जाएगा। देखिए ना, दुनिया में हम बहुत चीज़ें तोलते हैं, लोग अपनी अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट में नॉर्मली ये चेक कर रहे होते हैं कि डेट क्या है, क्रेडिट क्या है, हमें देने कितने हैं, लेने कितने हैं, और जो बच जाएगा वो मेरा है। एक ऐसी बैलेंस शीट कयामत के दिन भी बनाई जाएगी जब आमाल तोले जाएंगे। तो व्यूअर्स, गौर ये करना है कि मीज़ान कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, आमाल किस वे में उस पर डाले जाएंगे, साहिब मीज़ान कौन है, कौन से आमाल हैं जो उस स्केल पर, उस मीज़ान पर भारी हो जाएंगे, ये सब और उसके अलावा बहुत कुछ जानेंगे आज की एपिसोड में। आइए बिना किसी ज़रूरत तमहीद के बात को लेकर आगे चलते हैं। जिस मीज़ान पर आमाल का वजन किया जाएगा वो इतना बड़ा होगा कि अगर तमाम आसमानों और जमीन को उसमें वजन किया जाए तो वो उसमें समा जाए। ये इतना बड़ा तराजू या इतना बड़ा मीजान होगा। फरिश्ते उसे देखकर अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, तू इसमें इससे किस किस को तोलेगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, अपनी मखलूक में से जिसको चाहूंगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे, तुझे पाकी है, हम यूं तेरी इबादत ना कर सके जैसा तेरी इबादत का हक था। इस मीजान का नाजरीन एक कांटा और दो पलड़े हैं। मीज़ान के निगरान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम होंगे। इस पर इंसान के आमाल तोले जाएंगे, नेकियों और गुनाहों का वजन किया जाएगा। अच्छा, हो सकता है मे भी आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा हो कि हमारे जो एक्ट्स हैं, हमारे जो आमाल हैं, ये कोई फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है? ऐसी चीज़ तो नहीं जिसको टच किया जा सके, या एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रखा जा सके, या इसका कोई वजन किया जा सके, ये कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है? तो फिर इनको तोला कैसे जाएगा? तो उलमाए किराम ने इसकी मुख्तलिफ जवाब दिए हैं। एक जवाब यह दिया गया कि बंदे को उसके अमल के साथ तोला जाएगा, जबकि बाज़ किताबों में यह आता है कि नेकियों और बुराइयों का रजिस्टर तोला जाएगा, और एक बात यह भी मिलती है कि अमल को जिस्म की सूरत देकर उसका वजन किया जाएगा, और यह भी पॉसिबल है बिकॉज अल्लाह कैन डू एवरीथिंग, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो तो हर शय पर कादिर है ना। मीज़ान की एक स्पेशलिटी यह होगी कि उसका सिस्टम दुनिया के तराजू जैसा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के तराजू में जो भारी वाला हिस्सा होता है वो नीचे हो जाता है, हल्का वाला ऊपर हो जाता है। आखिरत में कायम होने वाले मीज़ान में जो भारी वाला पलड़ा होगा वो ऊपर हो जाएगा, और जो हल्का वाला होगा वो नीचे हो जाएगा। मीज़ान के हवाले से ये बात तो कॉमनली लोगों को क्लियर होती है कि मीज़ान पर जिसके नेक आमाल ज़्यादा होंगे वो जन्नत में जाएगा, बुरे आमाल भारी होंगे तो वो दोजख में जाएगा, लेकिन जिन के दोनों आमाल बराबर होंगे उनके साथ क्या मामला होगा? ऐसा भी होगा कि बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएंगे? व्हाट विल हैपन टू देम? हम आपको बताते हैं उनके साथ क्या होगा। ऐसे लोग पुल पर यानी पुल सिरात पर रोक दिए जाएंगे, वो असहाबे आराफ में से होंगे। आराफ जन्नत और दोजक के दरमियान एक दीवार है। तफासीर में यह भी आता है कि यह जन्नत और दोजक के दरमियान एक पर्दा है। यह पर्दा इसलिए है ताकि दोजक का असर जन्नत में और जन्नत का असर दोजक में ना आ सके। चूंकि यह पर्दा बहुत ऊंचा होगा इसलिए इसे आराफ कहा जाता है, क्योंकि आराफ के माना है बुलंद जगह। नाजरीन, यहां मैं आपको टॉपिक से हटके एक और बात बताना चाहता हूं कि जिन्नात के बारे में उलमाए किराम फरमाते कि वो आराफ में रहेंगे, क्योंकि जन्नत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जागीर है, लिहाजा सिर्फ उन्हीं की औलाद को मिलेगी। एनीवे, अब आइए दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तीन मकामात ऐसे हैं जहां कोई किसी को याद नहीं रखेगा। सोचिए कैसा नफसा नफसी का वक्त होगा कि कोई किसी की फिक्र नहीं होगी, कोई किसी को याद नहीं कर पाएगा। मीजान रखते वक्त हत्ता के बंदा देख ले कि नेकियां वाला पलड़ा भारी है या गुनाहों वाला। नंबर दो, नामा अमाल मिलते वक्त कि अमाल नामा राइट हैंड में मिला है या लेफ्ट हैंड में। नंबर तीन, जब दोजख से गर्दन निकलेगी और कहेगी मुझे तीन तरह के अफराद पर मुसल्लत किया गया है, आई हैव बीन इम्पोज्ड ऑन थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन। مجھے اس پر مسلط کیا گیا ہے جو اللہ پاک کے ساتھ کوئی اور خدا بھی مانتا ہے، مجھے ہر سرکش ہٹ دھرم پر مسلط کیا گیا ہے، اور ہر اس متکبر پر جو حساب کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو، بس اس وقت کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ناظرین، اتنے سارے اعمال ہوں گے، انسان کی پوری زندگی کے اعمال، ان میں نیکیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، مگر فرسٹ آف آل سب سے پہلے میزان پر کیا رکھا جائے گا؟ تو یاد رکھیں کہ میزان پر سب سے پہلے وہ مال رکھا جائے گا جو انسان نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہوگا، اپنی خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے بال بچوں پر خرچ کیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کریں، یہ بڑی نیکی ہے۔ فکر آخرت رکھنے والا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میزان پر اس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو۔ احادیث مبارکہ میں ایسے کئی اعمال بتائے گئے ہیں جن کے کرنے والے کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ان میں سے اب چند باتیں غور سے سن لیجیے۔ یقیناً چاہتے تو ہم سارے ہیں نا کہ میزان ہمارا نیکیوں والا بھاری ہو جائے، تو آئیے سنیے پانچ چیزیں میزان پر بڑی بھاری ہیں۔ اٹس ویری ایزی، ہاں بڑا آسان عمل بتانے جا رہا ہوں، بی پریپیئر فار دیٹ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نمبر پانچ، مسلمان کی نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور وہ ثواب کی امید پر صبر کرے، کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے اور والدین جو ہیں اس پر صبر کریں، یہ بڑے کمال کے کام ہیں اور یہ میزان پر بڑے بھاری ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر فرمایا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو میزان کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اب میں ایک بہت کمال کی حدیث سنانے جا رہا ہوں، یہ میری بھی ون آف فیوریٹ حدیث ہے، اور اس حدیث پاک میں سبحان اللہ کیا خوبصورت نبی پاک کے پیارے پیارے فرامین ہیں، موتیوں جیسے الفاظ ہیں، اور یہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے۔ اقالی صاحب اسلام نے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، ہے نا موتیوں جیسے الفاظ ہیں۔ اور آگے کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ کیا بنے گا اس حدیث کا؟ دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، اور رحمان عز و جل کو محبوب ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھتے رہا کریں، اس کو پڑھتے رہا کریں، میزان پر بھاری ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اور اللہ کو پیارے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں دو ایسی خصلتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو دیگر اعمال کے مقابلے میں پیٹھ پر بہت ہلکی اور میزان پر بہت بھاری ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق اور طویل خاموشی کو خود پر لازم کر لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، ان کی مثل مخلوق کا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ طویل خاموشی، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، بہت زیادہ باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، اور ان باتوں کے اندر پھر غلطیاں بھی انسان سے ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں نا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، مطلب کی، فائدے کی، اچھی باتیں کریں، بری باتوں سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ویورز، علماء اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے لوگ اس دن بہت فائدے میں ہوں گے۔ قیامت کے دن ایک شخص اس حال میں آئے گا کہ اپنے عمل کو کم سمجھ رہا ہوگا، وہ اسی حالت میں ہوگا کہ بادلوں کی مثل کوئی چیز اس کے میزان میں آ گرے گی، تو کہا جائے گا، وہ بھلائی ہے جو تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا، تیرے مرنے کے بعد لوگوں نے اس پر عمل کیا تو تجھے بھی اس کا اجر دیا گیا ہے۔ مبارک ہو انہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ایک استعمال کا بھی ہمیں درس مل رہا ہے۔ زندگی میں کچھ ایسا کر کے تو جانا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ اسے سنیں، فائدہ اٹھائیں، نیکی کریں، ہمیں ثواب ملے۔ کچھ ایسا کر کے نہیں جانا چاہیے کہ ہم تو چلے جائیں، ہماری ویڈیوز، ہماری چیزیں بعد میں بھی لوگ دیکھیں، اور جناب گناہ ہمیں ملتا رہے اور عذاب ملتا رہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت علماء کی روشنائی یعنی انک جو ہے اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا، تو علماء کی جو روشنائی ہوگی، ان کے قلم کی جو انک ہوگی، وہ شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ علماء کا یہ مقام ہے، ایک ایسا عمل جس کو عام طور پر امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہوتی، بٹ میزان عمل پر اس کا وزن اتنا ہوگا کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ وہ عمل ہے جنازے کے پیچھے چلنا، جو کسی کے جنازے کے پیچھے چلا تو اس کے میزان میں احد پہاڑ کی مثل دو کی رات اجر رکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ عرش کی کشادگی میں आपके लिए एक मखसूस जगह होगी जहां आप दो ग्रीन चादरें पहने तशरीफ फरमा होंगे, खजूर के लब्बे दरख की तरह दराज कद होंगे और अपनी औलाद को मुलाहिजा फरमा रहे होंगे कि किसको जन्नत की तरफ और किसको जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा। आप ये व्यू कर रहे होंगे कि मैशर के मैदान में क्या हो रहा है। नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया है ये कि आपकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ेगी जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा और उसे जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा। तो आप बुलंद आवाज से पुकारेंगे और किसको पुकारेंगे? हमारे आका अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारेंगे, ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक फरमाएंगे, ए अबुल बशर, मैं हाजिर हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, ये शख्स जिसे जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है ये तो आपका उम्मती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं तेज़ी से फरिश्तों के पीछे जाऊँगा और कहूँगा, ऐ मेरे रब के फरिश्तों रुक जाओ, स्टॉप, रुको। वो अर्ज करेंगे, हम तो अल्लाह करीम का हुक्म नहीं टालते, जो हुक्म हो वही करते हैं, हम कैसे आपके कहने पर रुक जाएं? वी डू ओनली व्हाट वी आर ऑर्डर टू डू। फरिश्तों के इस जवाब पर नबी पाक अलैहिस्सलाम अपना लेफ्ट हैंड जो है अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ेंगे और अर्श की जानिब मुतवज्जे होकर अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब, तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि मेरी उम्मत के बारे में मुझे रुसवा ना फरमाएगा? अर्श की जानिब से एक निदा आएगी कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और इस बंदे को दोबारा उसके मकाम की तरफ ले जाओ। नबी पाक फरमाते हैं, फिर मैं अपनी कमर के पास से पोरे के बराबर एक छोटा सा कागज का पीस निकालूंगा और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके मीज़ान के जो राइट साइड होगी, नेकियों का पलड़ा होगा, उसमें डाल दूंगा। उस पीस ऑफ पेपर की वजह से नेकियों वाला पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा, गुनाहों पर गालिब आ जाएगा। अब महशर में पुकार पड़ जाएगी, बंदा खुश नसीब हो गया, इसकी तौले भारी हो गई, फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ लेकर चलेंगे। तो कहेगा, ऐ मेरे रब के फरिश्तों ज़रा रुको, मैं इनसे कुछ बात तो कर लूँ जो अपने रब के यहाँ इतने ऑनरेबल हैं, इतने मुअज़्ज़ज़ हैं, क्योंकि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम को पहचाना नहीं होगा। वो फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ करेगा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपका चेहरा किस कदर हसीन है, आपके अखलाक कितने अच्छे हैं, आप कौन हैं? यकीनन आपने मेरी बुराइयों को कम किया, मेरी मुसीबत में मुझ पर रहम फरमाया। आप अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं कहूँगा कि मैं तेरा नबी हूँ और ये तेरा मुझ पर पढ़ा गया दुरूद पाक है जिससे तेरी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, जिसकी आज तुझे सख्त ज़रूरत थी। गौर कीजिए, दुरूद पाक कैसा काम आने वाला वजीफ़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान शफात भी इसमें नज़र आ रही है और दुरूद पाक की अहमियत भी नज़र आ रही है। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक कसरत से पढ़िए, मीज़ान अमल पर इंशाल्लाह नेकियों के पलड़े में वज़न का काम करेगा। कुर्बानी करने वालों को मुबारक हो, क्योंकि कुर्बानी के बारे में आता है कि कुर्बानी के जानवर को गोश्त और खून के साथ लाया जाएगा और 70 गुना मल्टीप्लाई करके मीज़ान में रख दिया जाएगा। तो कुर्बानी भी खुश दिली के साथ किया करें। व्यूवर्स, एक बात हमेशा हमारे जहन में रहनी चाहिए कि आखिरत के जितने भी मराहिल हैं ना, अगर किसी को इसमें कामयाबी मिलेगी तो वो भी महज अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फजल से ही मिलेगी। एक बड़ा ही अमेजिंग वाकया आपको सुनाता हूँ। रवायत में आता है कि एक राहिब यानी ईसाई इबादत करने वाला था, गैर मुस्लिम था, अपनी इबादत गाह में उसने 60 ईयर्स तक इबादत की। एक दिन उसने आसमान से बारिश बरसते हुए देखकर कहा कि अभी मुझे कोई नज़र तो नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ से नीचे उतरूँ तो पानी भी पी लूँगा, फ़ायदा उठा लूँगा, वजू भी कर लूँगा, फिर अपनी जगह भी आ जाऊँगा। चुनाचे अपनी इबादतगाह से वैसे नहीं निकलता था, मगर एक रोटी लिए वो इबादत खाने से नीचे उतरा, अचानक उसके सामने एक औरत आ गई और उस औरत ने इस राहिब को गुनाह की दावत दी। शैतानी हमला था, राहिब अपने आप पर काबू नहीं पा सका और गलत काम कर दिया उसने। फिर गुस्ल के लिए पानी के घड़े में दाखिल हुआ, वहीं पर उस पर नजा की कैफियत तारी हो गई। उसी दौरान करीब से एक मिस्कीन गुजरा, उसने इशारे से उस मिस्कीन को बुलाया और अपनी चादर के नीचे से रोटी लेने का कहा। यहां मिस्कीन ने वो रोटी उठाई और एग्जैक्टली उसी टाइम उस राहिब का इंतकाल हो गया। अब मीजान पर उसके 60 साल आमाल नेकियों के पलड़े में रखे गए और एक जो उसने बदकारी की थी वो गुनाहों के पलड़े में रखा गया, तो वो गुनाहों का पल्ला गालिब आ गया। 60 साल की इबादत एक तरफ हो गई, मगर फिर वो जो एक रोटी मिस्कीन को दी थी उसकी बरकत से फिर नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा और उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। तो हमें नहीं पता किस अमल से रब राजी हो जाए, किस अमल से हमारी मगफिरत हो जाए। तो नेकियां करते रहिए और खुदारा गुनाहों से अपने आप को बचाइए। क़यामत के दिन आज़ाए वुज़ू, ये जो वुज़ू करते हैं ना, मुबारक उनको जो नमाज़ पढ़ते हैं, बार बार वुज़ू करते हैं, वुज़ू में जो तरी रह जाती है, जो हल्का हल्का सा हमारा बॉडी गीली रहती है, पार्ट ऑफ द बॉडी तर रहते हैं, इनका भी वजन किया जाएगा। तो कब जब वजू किया करें तो उसको बिल्कुल टोटली आप ड्राई ना कर लिया करें, थोड़ी बहुत तरी रहने दिया करें, क्योंकि ये तरी भी जो सुभान अल्लाह वही मीज़ान अमल पर इसको भी तोला जाएगा, नेकियों का पल्ले में इंशाल्लाह रखा जाएगा। हदीस पाक में आता है, तुम अपने खादिम के काम में जो तख़फीफ करोगे, आसानी करोगे, क़यामत के दिन उसका अजर व सवाब तुम्हारे मीज़ान में रखा जाएगा। लुक एट हाउ ब्यूटिफुल अवर रिलीजन इज़, कि अपने खादमीन अपने मुलाजमीन के साथ अच्छा बर्ताव करें, कभी कभी उन्हें रिलीफ दें, उनके लिए आसानी करें। इंशाल्लाह ये आसानी आपके लिए मीज़ान अमल पर जो है वो वज़न का काम करेगी, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। मगर आज हाल ये है कि लोग मुलाजमीन को गालियाँ देते हैं, सख्ती करते हैं, जलील करते हैं। बाज़ औक़ात वो गरीब आदमी हमारे सामने कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन वो दिल तो रखता है ना, है उसका दिल टूट रहा है, उसको तकलीफ़ पहुँच रही है, हम सोच ही नहीं रहे। वो इसलिए छोड़ के नहीं जा रहा कि उस बेचारे को पता है आजकल बेरोज़गारी बड़ी है, कहीं जॉब नहीं मिलेगी। मगर याद रखिए, ये तमाम जुल्म, ये तमाम सख्तियाँ कहीं कयामत के दिन आपको फंसवा ना दें। डियर व्यूवर्स, हम आपको कुछ ऐसे खुश नसीबों की बात भी बताते हैं कि जिनके आमाल मीज़ान पर तोले ही नहीं जाएंगे। जी हाँ, मीज़ान हर एक पर कायम नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ वो लोग भी होंगे जो बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। उनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उनके लिए मीज़ान कायम ही नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह। अब कौन होंगे वो? मुसीबत जदों के ना तो नामा अमाल खोले जाएंगे, ना ही मीज़ान कायम किया जाएगा, उन पर अजर व सवाब की बेहिसाब बारिश होगी, यहाँ तक कि अल्लाह पाक की जनाब से मुसीबत जदों को अता करदा कसीर सवाब को देखकर आफियत में रहने वाले, आसानियों में रहने वाले मैदान महशर में तमन्ना करेंगे, काश के दुनिया में हमारे जिस्म भी कैंचियों से काट दिए गए होते। यानी उन पर भी दुनिया में तकालीफ आती तो वो उन पर सब्र करते और आज इतने सवाब के मालिक हो जाते। अब यहां उन लोगों को सोचना है कि जिन पर मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, दुनिया में डिफिकल्टीज हैं, शिकवा ना करें। हाँ, कयामत के दिन ये ऐसे लोग बहुत नवाजे जाएंगे जिनको दुनिया में डिफिकल्टीज हैं, मगर सब्र करना भी तो जरूरी है ना। डिफिकल्टीज आती हैं तो बेसब्री कर लेते हैं, तो अल्लाह पाक मुझे और आपको सब्र भी नसीब फरमाए। व्यूअर्स, हुकूकुल इबाद में कोताही करने वालों का मामला आखिरत में बड़ा खतरनाक होगा, बहुत बुरा होगा। हजरत सैयदना सुफियान सॉरी फरमाते हैं, अगर तू बारगाह इलाही में यूं हाजिर हो कि तेरे जिम्मे 70 ऐसे गुना हों जो तेरे और तेरे रब ताला के दरमियान हो, तो ये तुझ पर इससे ज्यादा आसान होगा कि तू एक ऐसा गुनाह लेकर अल्लाह पाक से मिले जो तेरे और बंदों के दरमियान हो। अब गौर कीजिए, 70 गुनाह अल्लाह के किए उससे ज्यादा खतरनाक ये कि एक गुनाह जो है वो बंदों और हमारे दरमियान हो, क्योंकि अल्लाह ही की मशीयत है ना। अल्लाह चाहे तो अपने सारे हुकूक माफ फरमा दे, मगर अगर बंदे को तकलीफ पहुंचाई है, जब तक वो माफ नहीं करेगा, रब भी माफ नहीं करेगा। काश ये बात हमें समझ आ जाए। लिहाजा हमें हुकूकुल इबाद के मामलात में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। जो बंदों के हुकूक है ना, किसी का हक ना मारें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, और कहीं अगर गलती हो जाए तो, अगर अनजाने में जुल्म हो जाए तो दुनिया ही में उससे माफ करवा लें, उसे राजी कर लें। लेकिन याद रखिए, अगर दुनिया ही में नामा अमाल से ये बुराई साफ ना की ना, तो आखिरत में कहीं मीज़ान में ऐसा मामला ना हो जाए कि उन्हें राजी करने के लिए हमें अपनी नेकियां देनी पड़ जाएं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम बिला हिसाब व किताब हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारी नेकियों का पलड़ा अगर आमाल तोले जाएं तो वो भारी हो जाए। तो ज़िंदगी में अपना एनालाइज खुद कर लीजिए ना, कयामत की बैलेंस शीट बने उससे पहले क्यों ना हम अपनी बैलेंस शीट खुद बना लें। और सच्ची बात यह कि अगर सच्चा सवाल करें अपने आप से कि मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या नेकियाँ ज़्यादा हैं, तो जवाब तो आ रहा है। तो अब नेकियों का पलड़ा अगर भारी करना है तो ऐसे आमाल कीजिए कि नेकियों का पलड़ा भारी होने लग जाए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। अगले एपिसोड में कयामत के बाद के अहवाल इंशाल्लाह मजीद बयान करेंगे। इस वेब सीरीज़ को लाइक भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि आपको मजीद बरकतें हासिल हों। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।